रानी माँ ने मेहमानों के लिए तरह तरह के खाने का इंतजाम करवाया था। दूध जलेबी, समोसे, कचौड़ी, ठंडे मोटे रसगुल्ले और गरम गरम चाय, साथ ही दो तरह के परांठे, आलू के और बथुआ के। हर तरह की मिठाई भी थी। कुल मिलाकर गांव की हर स्पेशियलिटी वहां मौजूद थी। उन सब चीजों की भीनी खुशबू उन तीनों को अपनी ओर खींच रही थी। सो जैसे ही ठकुराइन जी ने कहा, अरे आप लोग कृपया तकल्लुफ ना करें और खाना शुरू करें, उनका खाना पीना खत्म होने पर रानी माँ यानी ठकुराइन जी बोली, आप लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो कोई संकोच मत कीजिएगा, जरूर बताइएगा। और हमने सुना है आपकी गाड़ी गांव में घुसते ही खराब हो गई है, सो आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने आदमियों को गांव की बाहर भेजकर आप लोगों की गाड़ी ठीक करा दी है। आप लोग अब खैर से जा सकते हैं। जैसे ही ठकुराइन जी ने जाने की बात कही, उन तीनों का मुंह तर गया। वे तीनों एक दूसरे को देखने लगे। मान जिसके मुंह में समोसा था, वो खाते खाते आधे मुंह से ही नीचे गिर गया। वो घूर घूर कर ठकुराइन जी को देखने लगा और अचानक उसकी आंखों में खून उतर आया। तब अमन से रहा नहीं गया और वो उठकर खड़ा हो गया। आप कहना क्या चाहती हैं? क्या तारा हमारे साथ नहीं जाएगी? अमन ने एकदम साफ साफ बात की। उसके पूरे जिस्म में बेचैनी सी होने लगी थी। अमन की बात सुनकर ठकुराइन जी खड़ी हो गईं और बोली, पर हम अपनी बेटी को आपके साथ क्यों भेजेंगे? हम जानते हैं आप लोगों ने हमारी बेटी को हमारे पास तक सही सलामत पहुंचाया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपनी वापस मिल गई बेटी को आप लोगों के साथ भेज देंगे। ये सुनकर करिश्मा जी का चेहरा उतर गया। जहां वो पहले तारा परी का सच जानकर खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी, वहीं अब वो अपने आप को कोसने लगी कि वो वहां आखिर आई ही क्यों। ना वो तारा को लेकर आती और ना अब उसकी माँ ऐसी बात करती, और वो वहीं तारा से अपने बेटों की शादी करा देती। मान के तो आंखों में खून उतर आया था और वो खा जाने वाली नजरों से रानी माँ की ओर देख रहा था। करिश्मा जी ने मान की आंखें देखी, उन्हें भी डर लग रहा था। फिर वो खुद को संभाल कर बोली, वो एक्चुअली ठकुराइन जी, आपकी बेटी तारा की सगाई मेरे बेटों से हो चुकी है और आज इन तीनों की शादी होनी थी, और मैं यहाँ तारा बेटी को उसके परिवार से मिलाने के लिए लेकर आई थी। ये सुनते ही रानी माँ चौंक कर खड़ी हो गई और बोली, ये आप क्या कह रही हैं? शादी मेरी बेटी की, और वो भी आपके दो बेटों से? ये कैसे हो सकता है? भला एक लड़की की शादी दो लड़कों से कैसे हो सकती है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? तब करिश्मा जी थोड़ा विनम्र होते हुए बोली, लेकिन ठकुराइन जी, तारा बेटी ने खुद हाँ किया है कि वो मेरे दोनों बेटों से शादी करेगी। तारा मेरे दोनों बेटों को पसंद करती है। तब ठकुराइन जी बोली, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप एक औरत होकर भला ऐसा कैसे कह सकती हैं? मेरी बच्ची नादान है, उसे अपने अच्छे बुरे का कुछ भी नहीं पता है। मैं उसकी माँ हूँ और उसकी जिंदगी के सब बड़े फैसले मैं ही किया करती हूँ। तब करिश्मा जी बोली, लेकिन ठकुराइन जी, आप एक बार उससे यानी तारा बेटी से पूछ तो लीजिए, आई एम श्योर वो भी वही बोलेगी जो मैंने आपसे कहा है। तब ठकुराइन जी कुछ देर सोचती हुई अपने एक नौकर को बुलाती हैं और कहती हैं, जाओ और मेरी तारा को बुलाकर लाओ। उस नौकर ने सादर मंदी से अपना सिर झुकाया और तारा परी को बुलाने के लिए चला गया। और जल्दी ही तारा परी उन सबके बीच में खड़ी हुई थी, और चूंकि अब उसे एक गांव में रहने वाली लड़की की एक्टिंग करनी थी, सो सोनल परी ने उसे गांव की ही एक लड़की की तरह सजा दिया था। एक हल्के पीले रंग का लहंगा, लाल रंग की चोली और येलो मिक्स रेड कलर का दुपट्टा, और बड़ी सी लंबी चोटी जो उसके जिस्म पर एकदम काली नागिन की भांति लग रही थी। तारा परी के लहंगे और चोली में 4 इंच का जिप था, जिससे उसकी कमर साफ दिखाई दे रही थी। वो बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। अमन उसे बड़ी ही मोहब्बत से देख रहा था, जबकि मान उसे देखकर पागल सा हो रहा था। उसकी खूबसूरत जिस्म को देखकर वो अपनी राल टपकाने लगा था। तारा परी को देखकर वो अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। तब ठकुराइन जी ने अपने दोनों हाथों से तारा परी की नजर उतारी और अपने माथे से लगाकर अपने हाथों की उंगलियां चटका दी और बोली, तारा बेटी, ये कह रही हैं कि तुम इनके बेटों से मोहब्बत करती हो और इनसे शादी करना चाहती हो? तब अपनी माँ की बात सुनकर तारा परी ने अपना सिर झुका लिया और मन ही मन बोली, हाँ रानी माँ, शादी तो करना चाहती हूँ, लेकिन जब से मान ने बगीचे के सरोवर में मेरे साथ गंदा व्यवहार किया, तब से मेरा मन मान सिंह राठौर को लेकर कुछ बदल सा गया है। लेकिन हाँ, अमन सिंह राठौर के साथ मुझे अच्छा लगता है। लेकिन माँ, नेक दिल इंसान तो ये दोनों ही हैं, तो फिर एक के साथ मुझे अच्छा नहीं लगता और एक का साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। रानी माँ मन ही मन सोचती हैं, बेटी तू फिक्र मत कर, तेरी ये समस्या का समाधान निकालने के लिए ही मैं यहाँ आई हुई हूँ। जैसे ही रानी माँ ने ये कहा, तारा परी सवालिया नजरों से अपनी माँ की ओर देखने लगी। तभी रानी माँ सबके सामने बोली, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ तारा, क्या तुम इनके दोनों बेटों से शादी करना चाहती हो? तब तारा परी ने एक नजर अमन की ओर देखा और फिर मान की ओर देखा, जिसकी आंखों में उतरे खून को देखकर तारा परी ने जल्दी से अपनी नजरें घुमा ली और वो रानी माँ की ओर देखते हुए बोली, माँ भला आपके सामने मैं ये फैसला कैसे ले सकती हूँ कि मुझे किससे शादी करनी है किससे नहीं? माँ जैसा आपको ठीक लगे और जो भी आपका फैसला हो वो मुझे मंजूर है। तारा परी ऐसा कहकर बिना अमन और मान को देखे अपने कमरे में चली गई। करिश्मा जी अब परेशान हो चुकी थीं, क्योंकि उनके दोनों बेटों की जिंदगी तारा में बसी हुई थी। तब करिश्मा जी अपने दोनों हाथ ठकुराइन जी के सामने जोड़कर बोली, देखिए मैं जानती हूं कि एकदम से अपनी बेटी के लिए दो लड़कों को कबूल करना किसी भी माँ के लिए बहुत ही बड़ा और मुश्किल फैसला हो सकता है, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। मेरे दोनों बेटों के साथ तारा बेटी की सगाई हो चुकी है, बस आप भी अपना आशीर्वाद दीजिए और आज रात को ही इन तीनों की शादी करवा दीजिए। ये सुनकर रानी माँ गुस्से से खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, देखिए करिश्मा जी, आपने मेरी बेटी की जान बचाई है, मैं आपकी एहसानमंद हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटी को जानबूझकर एक ऐसी जिंदगी दे दूँ जिसमें उसके दो दो पति हैं। आपके बेटे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वे एक नहीं दो हैं, और माफ़ कीजिएगा, मैं आपके दोनों बेटों से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं आपके दोनों बेटों में से किसी एक बेटे के बारे में ज़रूर सोच सकती हूँ। इतना कहकर रानी माँ अंदर चली गईं और वे तीनों एक दूसरे को खाली खाली नज़रों से देखने लगे। मान का गुस्से के मारे बुरा हाल था और वो एकदम से उठा और बाहर की ओर चला गया। मान का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, उसने कभी नहीं सोचा था कि तारा को इतने करीब पाकर वो खो देगा। वो किसी भी कीमत पर तारा को खुद से दूर नहीं कर सकता था और आज उसकी माँ यानी रानी परी के द्वारा कहे गए शब्द उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे। तभी मान ने अपने ठीक सामने एक बहुत बड़ा सा चौड़ा पेड़ देखा। तभी मान ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर गुस्से से उस पेड़ के तने पर दे मारी। मान का पंच इतना तेज था कि वो लंबा चौड़ा दरख्त एक पल में ही नीचे गिर गया। रानी माँ जो अपने कमरे की खिड़की से खड़ी हुई मान का गुस्सा देख रही थी वो कुछ सोचने लगी।
तभी रानी माँ ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते रानी माँ के हाथ में तीन चमकदार पत्थर आ गए। वे पत्थर एकदम सुनहरी सफ़ेद रंग के थे। उस सुनहरे रंग में सफ़ेद रंग की झलक मार रही थी जो अपने आप में ही बेहद खूबसूरत थी। तभी रानी माँ ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और देखते ही देखते दो छोटे छोटे बच्चे, उनमें एक लड़का था और एक लड़की थी, वहां आ गए। रानी माँ ने उन्हें गायब कर दिया और बाहर की ओर भेज दिया। तभी मान भिनभिनाता हुआ अंदर आ गया और अपनी माँ करिश्मा जी से बोला, मॉम क्या हो रहा है ये सब? अब मेरा गुस्सा मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। आप जाइए और सीधे सीधे उनसे कह दीजिए कि उनकी बेटी तारा की शादी आपके दोनों बेटों से होगी। अगर वे प्यार से मानती हैं तो ठीक है, वरना मैं इन सबको मारकर तारा को यहाँ से उठा ले जाऊँगा। मान की बात सुनकर करिश्मा जी कांप कर रह गई, जबकि अमन गुस्से से आग बबूला हो उठा और वो उठा और मान का कॉलर पकड़ते हुए बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू जानता है तू कह क्या रहा है? वो एक माँ है और उनका अपनी बेटी को लेकर ये सोचना जायज़ है, समझा? तू अपने आप पर कंट्रोल कर और जो कुछ भी तेरे दिमाग में चल रहा है उस पर लगाम दे, अमन अपनी आँखें सुर्ख करके बोला। करिश्मा जी अपने दोनों बेटों को इस तरह से झगड़ता देख काफ़ी परेशान हो रही थी कि तभी रानी माँ, जो इस वक्त गाँव की एक ठकुराइन के वेश में थी, वो वहाँ आ गई और दोनों भाइयों को एक जगह खड़ा हुआ देखकर करिश्मा जी से बोली, करिश्मा जी। जैसे ही रानी माँ ने ये कहा, अमन और मान चौंककर उनकी ओर देखने लगे और तब तक अमन ने मान का कॉलर भी छोड़ दिया था।